हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 6, 7, 8, 9 and 10। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम विदुर काष्ठा यमुहु कुयोगिना निरस्त साम्या तिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्य ते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादया ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत्किलास्यत समेरिषीणां ऋषभ प्रसीदतां भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशीते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणनिच्छो दशषोडशात्मक सोलंकृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधारम शिवासदी गौरभक्तम्। मुक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। अध्याय छे दूसरा स्कंद छठा अध्याय जिसका शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि। तो यहाँ पर नारद जी ब्रह्मा जी को भगवान के विराट विशाल स्वरूप के विषय में बता रहे हैं कि संसार का प्रत्येक कण जो है वो भगवान के ही स्वरूप की झलक प्रदान करता है। इसका अर्थ ये है कि भगवान का वास्तव में स्वरूप है, इसीलिए प्रत्येक अंग को किसी न किसी दृश्य के साथ संबंधित करके बताया जा रहा है, क्योंकि भगवान डेफिनेटली बहुत विशाल है, हम बहुत सीमित जीव हैं। तो हमको भगवान की धारणा को समझने के लिए एक विशाल तस्वीर होना चाहिए, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि हमने कल पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने कहा विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और इसका नियामिक देव अग्नि है, उनकी त्वचा तथा अन्य छह स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं और उनकी जीव देवताओं पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों यानी रसों का उद्गम है। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घृणा शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की बड़ी बूटियाँ सॉरी जड़ी बूटियाँ उत्पन्न होती हैं और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियाँ उत्पन्न होती हैं। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्त केंद्र हैं, वे चमकते हैं तथा प्रकाशित रहते हैं। उनकी पुतलियाँ यानी नेत्र गोलाक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रियाँ आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। उनके शरीर के ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनकी त्वचा शक्ति गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम है तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली पत्थरों तथा लोह अयस्कों के उद्गम स्तर हैं। तो जो कुछ भी संसार में दिखने योग्य है वो केवल भगवान की ही एक छोटी सी झलक है। आज के श्लोक नंबर 6 में श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से इस पूरे जो अब तक हमने पढ़ा है उसको सार रूप में समझाएंगे। श्लोक देखिए,
बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणां, बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणां।
बाहवो यानी भगवान की जो भुजाएं हैं, लोकपालानां अर्थात लोकों के आधिपति या देवताओं के प्रायशः प्राय, क्षेम कर्मणां मतलब जन सामान्य के नेताओं तथा रक्षकों के। भगवान की जो भुजाएं हैं वो बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्यों की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। जितने भी यहाँ पर जीवों को रक्षा प्रदान करने वाले नायक हैं वो सब का उद्गम कहाँ से हुआ है? भगवान की भुजाओं से हुआ है। जैसे कहा जाता है भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के इस महत्वपूर्ण श्लोक की श्रीमद् भगवत गीता 10.41 एंड 42 में निम्नलिखित प्रकार से पुष्टि और व्याख्या की गई है और बहुत ही सुंदर मेरे प्रिय श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं
यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोऽंशसंभवं अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्षुना विष्टव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्।
यद्यत् विभूतिमत्सत्वं, इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत तेजस्वी है, बहुत ऐश्वर्यमान है, जो प्रेम करने योग्य है, श्री मधुर तमेव, जो कुछ ऐश्वर्यमान है, जो कुछ श्रीमान है, वो सब क्या है, तत्तदेवावगच्छत्व मम तेजो अंश संभव, वो मेरे अपार तेज का एक छोटा सा अंश है, वो मेरा ही एक छोटा सा सफुलिंग है, मेरी अपार तेज का, अपार प्रकाश का छोटी सी चिंगारी है, जो संसार में प्रेम करने योग्य दिखता है, आकर्षक दिखता है। और भगवान कहते हैं अथवा बहु नेते ने किम क्या तेना तो अर्जुन, मेरे बारे में संपूर्ण तो तुम जान के क्या करोगे, बस इतना ही जान लो विष्टव्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, कि मैं केवल अपने एक अंश के संपूर्ण जगत में फैला हुआ हूँ और पूरे ब्रह्मांड को पालता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ, उसको उत्पन्न करता हूँ, उसको सृजन करता हूँ और फिर संहार कर देता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तमाम शक्तिशाली राजा, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, इंजीनियर, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव तथा यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा मरुत जैसे देवता, जो अपने अपने पदों पर ब्रह्मांड के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता हैं, जो अपनी अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुसार भिन्न भिन्न उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो कोई भी है, चाहे वो बड़े बड़े देवता हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो सब भगवान के ही अंश हैं। ये सबको पावर तो भगवान ने ही दिया है ना, तो उनमें से कुछ जिनका उल्लेख विशेष रूप से ऊपर किया गया है, भगवान की इच्छानुसार विशिष्ट शक्ति के संपन्न से संपन्न है, जैसे अब तक हमने पढ़ा जितने भी विशेष जिनके ऊपर पास शक्तियाँ हैं, जैसे वरुण देव है, अश्विनी कुमार है, अग्निदेव है, उन सबको भगवान की ही शक्ति प्राप्त है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो जाए, ना तो पूर्ण होता है ना ही स्वतंत्र होता है। पूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण मतलब जिसको किसी और से कोई शक्ति लेने की आवश्यकता न हो, जो परिपूर्ण हो और अपने आप से कुछ कर पाए। जीव कुछ नहीं कर सकता जब तक कि भगवान उसको शक्ति प्रदान नहीं कर सकते, और जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव केवल उतना ही कार्य कर सकता है जितनी कि भगवान उसे आज्ञा और अनुमति देते हैं। तो वो जीव न पूर्ण है न स्वतंत्र है, चाहे वो कितना ही ज़्यादा बलवान या शक्तिशाली क्यों न हो जाए। इसी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। मूल उद्गम, हमारे पास चाहे कोई भी शक्ति है, चाहे सुंदरता है, चाहे बल है, चाहे ऐश्वर्य है, चाहे बुद्धि है, चाहे ज्ञान है, चाहे कुछ भी है, वो सब का उद्गम कौन है, कृष्ण है, वो कृष्ण के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई है। यदि कृष्ण नहीं प्रदान करते तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, ना हमारा शरीर ही न रहता, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे, यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं तो वे अपने अपने वृत्तिपरक कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और यह सिद्ध है शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय आशीष। वास्तव में जीव की जो सिद्धि है वो क्या है? सिद्धि प्राप्ति यही है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, और वो तभी संभव है जब हम भगवान के विषय में जानेंगे, भगवान की महिमा को जानेंगे कि हमारा अस्तित्व भगवान के कारण है, हमारी हर योग्यता भगवान के कारण है। इसको स्वीकार करना ही हमारा एकमात्र कल्याण है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात भगवान को स्वीकार नहीं करते, तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहेंगे। हमें सबसे पहले ये बात को मानना है कि हम भगवान के दास हैं। हमारे पास जो कुछ शक्ति है उसका उद्गम भगवान है। कृष्ण के कारण ही हमारी बुद्धि है, कृष्ण के कारण ही हमारी शक्ति, कृष्ण के कारण ही हमारा जीवन है। और जब तक जीव इस बात को स्वीकार नहीं करता, तब तक माया के कार्यकलाप चलते रहेंगे। और माया क्या करेगी, ये माया को पार करना बहुत कठिन है, और उसको पार करने का केवल एक ही तरीका है कि हम कृष्ण की शरणागत हो जाएं। माया के कार्यकलाप ऐसे होते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने को इस विश्व के सर्व सर्वा मान बैठता है। बस माया क्या है, ये मिथ्या अहंकार ही तो माया है। हमारा कुछ नहीं, हमारी कोई योग्यता नहीं, फिर भी जीव अपने आप को यही मानता है कि ये मैंने किया, ये मेरी शक्ति से, ये मेरा हुआ, मैं, ये मेरा है, ये मैं हूँ, मैं और मेरा के चक्कर में ही सब पड़े रहते हैं और अपने आप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव मैं तथा मेरा का प्राधान्य हो गया है, और मानव समाज में अस्तित्व के लिए कठिन जीवन स्पर्धा चल रही है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये मिथ्या अहंकार मैं और मेरा ही हम इस संसार में हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ है। जब तक जीव अपने वास्तविक अहंकार को नहीं समझ जाता कि मैं भगवान का दास हूँ और प्रत्येक वस्तु भगवान की ही है, भगवान की सेवा में यूज होनी चाहिए, तब तक जीव कभी भी इस माया के चुंगल से छूट नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अतः बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि भगवान को समस्त शक्तियों का चरम स्रोत स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें। एक बुद्धिमान की बुद्धिमानता ये नहीं है कि वो संसार में कितना ज़्यादा एडवांस हो जाता है, कितना ज़्यादा बहुत प्रोग्रेस करता है। बुद्धिमान में बुद्धिमान जो है वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानवान बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जीव की सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है कि वो भगवान की शरणागति को स्वीकार कर ले। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जी बुद्धिमान लोगों को कम से कम इतना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को समस्त शक्तियों का चरम स्रोत स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें। भगवान को प्रत्येक वस्तु का चरम स्वामी परम स्वामी स्वीकार कर लेने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे हैं। क्या स्वीकार करना है जीव को, यदि उसे परम सिद्धि प्राप्त करनी है, यदि जीव को अपना कल्याण करना है, तो सिर्फ इतना ही कि भगवान को प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी स्वीकार करना है। बस जीव इतना मान ले कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के उद्गम स्रोत हैं, जीव ही ये मान ले कि कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, परम स्वामी हैं,
तभी उसे वास्तविक सिद्धि मिलेगी। समाज की दृष्टि में मनुष्य का चाहे जो भी स्थान हो, किंतु यदि वह भगवान से प्रेम भाव का आदान प्रदान करने का प्रयत्न करता है और भगवान से आशीर्वाद से संतुष्ट रहता है, तो उसे सर्वाधिक मानसिक शांति का अनुभव होता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते, जीव को संसार में कुछ भी मिल जाएगा भले, लेकिन आनंद तो तभी मिलेगा, शांति तो तभी मिलेगी जब वो भगवान से प्रेम भाव का आदान प्रदान करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि मैं भगवान से संबंध निर्माण करूं, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करूं, उन्हें संतुष्ट करूं, तभी उसका मन जो है वो शांत होगा। मानसिक शांति उसे तभी प्राप्त होगी जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से लालायित रहता है। जीव सोचता है, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम सोचते हैं कि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके हमें आनंद मिलेगा। शांति इन भौतिक वस्तुओं में नहीं रखी हुई है, शांति तो भगवान की भक्ति से प्राप्त होती है, भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, भगवान की कृपा से, भगवान की करुणा से। और वो तभी प्राप्त होती है जब हम उनको सरेंडर करते हैं, जब हम उनको स्वीकार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मानसिक शांति या दूसरे शब्दों में मन की स्वस्थ अवस्था तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थित हो जाता है। बस जीव की आनंद की परिभाषा वो है जो जीव समझ नहीं पा रहा है। जीव सोचता है कि भक्ति करने से क्या मिलेगा, संसार में बहुत कुछ अर्न करना है, बहुत कुछ लर्न करना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है, अब भक्ति करने से क्या होगा। जबकि जीव चाहता है यही है कि मुझे आनंद मिले, मुझे शांति मिले, और वो भौतिक वस्तु और व्यक्तियों में खोज रहा है, जबकि वो एक गुप्त रहस्य है जो कि वो समझ नहीं पा रहा है। कि जो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मानसिक शांति या दूसरे शब्दों में मन की स्वस्थ अवस्था तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थित होता है। पूछकर देख लीजिए उन समस्त व्यक्तियों से जो किसी व्यक्ति से प्रेम करते थे और सोचते थे कि ये व्यक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मेरे मन की शांति प्राप्त होगी। आप मालूम करके देख लीजिए उन व्यक्तियों से जो सोचते थे कि यदि मैं इस एग्जामिनेशन में फर्स्ट आ जाऊंगा तो मुझे मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। आप पता कर लीजिए उन लोगों से जो सोचते थे कि यदि इतना धन मैंने प्राप्त कर लिया तो मुझे आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये केवल सोच है कि ऐसा मिल जाएगा भौतिक जगत में तो मुझे आनंद प्राप्त हो जाएगा। आनंद इन वस्तुओं में नहीं है, बाकी किसी भक्त से जो कि पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति है, भले उसके पास धन नहीं है, भले उसके पास ज्ञान नहीं है, भले उसके पास भौतिक वस्तुएं नहीं है, संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो मन से शांत है, वो आनंदित है, वो संतुष्ट है, क्योंकि उसने वो रास्ता अपनाया जिससे वास्तविक शांति प्राप्त हो सकती है। वास्तविक शांति केवल भगवान के श्री चरणों की भक्ति करने में है, भगवान से प्रेम करने में है। और यही यहाँ पर बता रहे श्री प्रभुपाद कि मानसिक शांति या दूसरे शब्दों में मन की स्वस्थ अवस्था तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थित हो। प्रेममयी कुछ अभिलाषा से नहीं, कुछ कारण से नहीं, बस प्यार करना आ जाए भगवान से, उसी दिन से सारी प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएंगी, सारी दुख, सारे कष्ट, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। भगवान के अंशों को भगवान की सेवा करने की विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है। ठीक उसी तरह जिस तरह श्रेष्ठ व्यापारी के पुत्रों को प्रशासन की विशिष्ट शक्ति प्राप्त की जाती है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर एक खास बात बता रहे हैं कि आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता, अतएव वह परिवार के अध्यक्ष अर्थात पिता की सहमति से अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताता है। इसी प्रकार चूंकि भगवान पिता हैं, अतएव सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्रों की भांति अपना कर्तव्य पूर्ण रूपेण और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए। और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज के में तुरंत ही शांति तथा संपन्नता आ जाएगी। भगवान हमारे पिता हैं। भगवान कहते हैं पिता हमसे जगत हो, और पुत्र का कल्याण तभी है जब वो पिता के आदेश का पालन करे, तभी वो आनंद से जी सकता है। क्योंकि यदि वो पिता की आज्ञा का की अवहेलना करेगा तो वो कहाँ से आनंद प्राप्त करेगा। उसी तरह से हम सब भगवान की संतान है, और यदि अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने देश में और अपने अस्तित्व में शांति तथा आनंद प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि हम अपने पिता से, अपने भगवान से प्रेम करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। आगे श्लोक नंबर 7 में ब्रह्मा जी नारद जी को संसार के समस्त भय से बचाने की उपाय बता रहे हैं कि जीव सदैव भयभीत रहता है। भय इस जीवन का एक ऐसा अंश है जो सदैव जीव के साथ जुड़ा रहता है ना। जो नहीं है उसे प्राप्त करने का भय, और जो प्राप्त है और उसके खो जाने का भय जीव के जीवन में सदैव रहता है। तो जीव इस भय से किस तरह से मुक्ति प्राप्त कर सकता है उसके विषय में यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकाम वरस्यापि हरिश्चरण हास्पदम्। विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकाम वरस्यापि हरिश्चरण आस्पदम्। विक्रमो मतलब अगले चरण, भू भुव स्व, भू मतलब अधोलोक तथा भुव मतलब ऊर्ध्वलोक और स्व तथा स्वर्गलोक, यानी स्वर्गलोक भूलोक भूलोक सब च भी क्षेमस्य हमारे पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा। शरणस्य च, शरण अर्थात निर्भयता का भी। सर्व काम वरस्यापि, सर्व काम यानी वह सब जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसकी हमें इच्छा होती है, जो हमारे हृदय में काम होती है, वरस्य समस्त वरदानों का भी, वो ठीक ठीक से, वो क्या है, हरे शरण आस्पदम। हरे मतलब भगवान के, शरण कमल, आस्पदम यानी शरण। अनुवाद देखिए, भगवान के अगले डग यानी ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं, उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर जीवों को निर्भय करने का एक उपाय बताया गया है कि भगवान के जो चरण कमल है, यदि उसकी कोई शरण ग्रहण कर लेता है तो उसके सारे भय से सुरक्षा हो जाती है, और ना केवल सारे भय से सुरक्षा हो जाती है बल्कि सर्व काम वरस्यापि, जितने भी जीव की इच्छा होती है वो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, समस्त काम को और सारे वरदान को प्राप्त करने वाले। जीव जब भगवान के चरण की शरण ग्रहण कर लेता है उसकी सारी इच्छाएं उसी तरह उसी समय पूरी हो जाती हैं, उसकी सारी आकांक्षाएं, जीवन के जितने भी मूल्य वरदान है उससे प्राप्त हो सकते हैं यदि वो भगवान के शरणों की शरण ग्रहण करता है। इसीलिए कहते हैं, बजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय शरणारविंद। जी अपने मन को कैसे भी करके ये न के न प्रकारे इस बात को समझाना है कि हे मन, तुम उस भगवान के चरण कमलों को भजो, उनको याद करो, उनका स्मरण करो, उनकी सेवा करो, जो कि जीव को अभय अभय प्रदान करने वाले हैं, सारे दुखों को दूर करने वाले हैं, सारे वरदान प्राप्त कराने वाले हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सभी प्रकार के भय से पूर्ण सुरक्षा के लिए तथा जीवन की हमारी जितनी भी आवश्यकता है उनके लिए हमको केवल इस लोक में अपितु ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक में तथा स्वर्ग लोक में भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जीव किस लोक में है वो नहीं देखा जाता कि खाली पृथ्वी पर भी, लेकिन हर लोक में भय है, स्वर्ग लोक में भी गिरने का भय है, अधोलोक में, भूर लोक में, जिस लोक में भी जीव जाएगा ना उसके जीवन में भय बना रहेगा। जन्म मृत्यु का ये जो झमेला है वो तभी खत्म होगा जब जीव भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करे। इसीलिए कहते हैं विक्रमो भूर्भवस्व च क्षेमस्य शरणस्य च, चाहे वो स्वर्ग में हो, भूलोक में, भवर लोक में हो, यदि वो अपना उद्धार चाहता है, यदि वो अपनी सुरक्षा चाहता है तो उसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को ही शुद्ध भक्तिमयी सेवा कहते हैं और इस श्लोक में इसका प्रत्येक संकेत किया गया है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्तिमयी सेवा का मतलब यही है कि जीव पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आश्रित हो और कोई भी आश्रय ना ढूंढे। किसी भी दुख में, किसी भी संकट में, किसी भी प्रॉब्लम में जीव की वास्तविक दुखों को दूर करने वाले, सर्व काम वरस्यापी, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले और सारे वरदानों को प्रदान करने वाले क्या हैं? हरेश चरण आस्पदम, हरि के चरण, और किसी की ओर निहारने की जरूरत नहीं है और किसी के पास जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान हरि के चरण आपके सारे दुखों को दूर कर सकते हैं, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इसके विषय में ना तो कोई संदेह होना चाहिए, ना किसी को किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि वे सब भगवान पर ही आश्रित हैं। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी जो कोई भी हैं, महान महान जितने भी वैज्ञानिक हैं, ऋषि हैं, संत हैं, वो सब भगवान के चरणों पर ही आश्रित हैं। उनको कृपा क्यों मिल रही है? क्योंकि भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं। तो यदि हमें भी भगवान की कृपा की आवश्यकता है, यदि हम भी क्षेम चाहते हैं, यदि हम भी वरदान चाहते हैं, तो हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान के चरणों पर ही आश्रय प्रदान करना चाहिए। भगवान के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दया पर आश्रित है, यहाँ तक कि सर्वव्यापी परमात्मा तक भगवान के परम स्वरूप पर आश्रित है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान के अंश हैं, वो भी भगवान की कृपा पर ही आधारित हैं, भगवान के परम स्वरूप पर ही आश्रित हैं। इसलिए हमें भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान से ही अपने संबंध को जोड़ना चाहिए, भगवान की शरण में आकर उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए, उनकी लीलाओं कथाओं को श्रवण करना चाहिए। इसी से जीव को अभय प्राप्त होता है, इसी से जीव को हर इच्छा उसकी पूरी हो जाती है, आनंद प्राप्त होता है। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं इस संसार में जो काम सुख है वो भी केवल भगवान के कारण ही जीव को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान के ये जो संसार में जो कोई भी आनंद किसी भी प्रकार से यदि प्राप्त किया जा रहा है तो उसका उद्गम तो भगवान ही है। तो जीव को जो काम के द्वारा, जो स्त्री पुरुष के मिलाप के द्वारा जो सुख मिलता है वो भी केवल भगवान के ही कारण है। इसके विषय में कहते हैं अपम वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते पुंसः शिष्ण उपस्थस्थो प्रजात्यानंद निर्वृते। अपम वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते पुंसः शिष्ण उपस्थस्तु
प्रजात्यानंद निर्वृते।
अपम वीर्यस्य, अपम मतलब जल का, वीर्यस्य अर्थात वीर्य का, सर्गस्य अर्थात सृजन करता अव्यय का, प्रजनस्य अर्थात वर्षा का, प्रजापति अर्थात सृष्टा का, पुंसम यानी भगवान का, शिष्ण यानी जननांग, जननांग भगवान की जो इंद्रिय है, उपस्तु अर्थात गुदा भाग, प्रजापति यानी जन्म देने के कारण, आनंद आनंद के निवृत्ते कारण। अनुवाद देखिए, भगवान के जननांग से जल वीर्य सृजनकर्ता अव्यय वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। संसार में जो भी जल है, जो वीर्य जिससे सृष्टि होती है, सृजनकर्ता अव्यय है, वर्षा है और प्रजापति जितने भी हैं, उन सब का जन्म जो है वो भगवान के जननांग से होता है। उनके जननांग उस आनंद का कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। जनन का कष्ट होता है संतान उत्पत्ति का, लेकिन उस कष्ट को सहन किया जाता है ताकि उस क्रिया में जो आनंद प्राप्त होता है उसके कारण। तो वो सब क्यों होता है, उनका भी उद्गम स्तन क्या है, वो भगवान ही है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जननांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता है। यूं तो सृष्टि, ये जो संसार में परिवार का जो भार होता है वो बहुत दुखदायक है, अगर देखा जाए तो केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन कुछ आनंद काम का या फिर धर्म के अनुसार जो हम करते हैं उसका जो आनंद, उसके कारण श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वो पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता है। यदि भगवत कृपा से जननांगों के ऊपर एक आनंद प्रदायक वस्तु का आवरण न होता तो मनुष्य जनन क्रिया ही बंद कर देता। ये वस्तु उतना प्रखर आनंद प्रदान करता है, करती है कि इससे पारिवारिक भार के कष्ट की पूर्ण रूप से विस्मृति हो जाती है। जीव को इतना आनंद इससे प्राप्त होता है कि वो उस भार के, जो पारिवारिक जो भार है, उसको कष्टों को ही भूल जाता है। व्यक्ति इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु संतान की संख्या बढ़ाता जाता है और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उनके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट अपने सिर पर ले लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने उस काम को अपना स्वरूप बताया। भगवान कहते हैं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। वो काम साक्षात मैं हूँ, और भगवान का मतलब होता है आनंद, और उस काम में जो आनंद है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसमें इतना आनंद होता है कि जीव चाहता है कि मैं एक ही संतान नहीं, और भी संतान होनी चाहिए। इसलिए वो पालन पोषण की कठिनाई की झंझट अपने सिर पर ले लेता है, किंतु यह आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती, क्योंकि यह भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होती है। वो आनंद भगवान के दिव्य शरीर की अनुभूति है। दूसरे शब्दों में, आनंद प्रदायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने लेकिन कहा है, तो वो बहुत ही गंभीर और सोचने की बात है कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैसे तो आनंददायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसने भौतिक कलमश ग्रहण कर लिया है। जब भौतिक वस्तुओं से साथ उसका सम्मेलन हो गया है तो वो घृणित हो गई है। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषयी जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है, अतएव भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना चाहिए। खाली जानवरों की तरह बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना चाहिए। अपने संतान को हर वो शिक्षा देनी चाहिए, शास्त्र अध्ययन कराना चाहिए, भगवान की भक्ति करानी चाहिए। ऐसे खाली कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे पैदा करके उनको छोड़ नहीं देना चाहिए। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव रूप में ही साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में ही परिवार नियोजन करना चाहिए। ये मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो संतान को उत्पन्न करता है तो आध्यात्मिक दृष्टि से उसको उच्च उठाना है। ये हमारा कर्तव्य है। केवल भौतिक एजुकेशन प्रदान करना या भौतिक अर्निंग किस तरह से करनी है ये बताना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं है। यदि वो माता पिता अपने संतान को भगवत भक्ति के विषय में नहीं बताते तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है माता पिता बनने का। यहाँ श्री प्रभुपाद जी साफ साफ कह रहे हैं कि भौतिक जगत में मानव रूप में ही साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में ही परिवार नियोजित करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। और आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं फैमिली प्लानिंग जो संतति निरोध के उपयोग के द्वारा किया जाने वाला परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का सर्वाधिक स्थूल रूप है। जो भौतिकतावादी इन उपायों का उपयोग करते हैं वे कृत्रिम विधियों द्वारा जननांग के ऊपर के आवरण की आनंद शक्ति का पूरा पूरा उपयोग करना चाहते हैं और उसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जननांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति और आनंद के लिए ही करना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अंग केवल इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय आनंद के लिए नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक मूल्यों को बनाए रखे हुए संतानों की उत्पत्ति के लिए है ताकि जीव जो है वो अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। इसलिए ये शक्ति भगवान के द्वारा दी गई है और इस शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 9। पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निर्वृतिर्मृत्यो निरस्य गुदम स्मृता। पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निर्वृतिर्मृत्यो निरस्यस्य गुदम स्मृतम्। पायुर्यमस्य, पायु मतलब गुदा, यमस्य मतलब मृत्यु का नियामिक देव, मित्रस्य अर्थात मित्र का, परिमोक्ष यानी मलद्वार का, नारद हे द्वार हे नारद, हिंसाया यानी ईर्षा का, निर्वृते यानी दुर्भाग्य का, मृत्यु यानी मृत्यु का, निरस्यस्य नरक का, गुदम अर्थात गुदा, स्मृत अर्थात समझा जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं नारद भगवान के विराट रूप का गोदा द्वार मृत्यु के नियामिक देव मित्र का लोक है। जो गोदा द्वार है वो मृत्यु के नियामिक जो देव मित्र हैं उनका लोक है और भगवान की बड़ी अंत का छोर ईर्ष्या दुर्भाग्य मृत्यु नरक इत्यादि का स्थान माना जाता है। जो कुछ मतलब अगर वो नरक द्वार है मृत्यु द्वार है जो कुछ भी है वो भगवान के ही अंग हैं। संसार में जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा ही उनका उद्गम भगवान ही है। आगे श्लोक नंबर 10 में कहते हैं पराभूतेर धर्मस्य तमसः चापि पश्चिम नाड्यो न नदनीनां च गोत्राणामस्ति संहति पराभूतिरधर्मस्य तमश्चापि पश्चिमा नाड्यो नदनदीनां च गोत्राणाम् अस्थि संहति पराभूते परा अर्थात उद्विग्नता का भूते पराभूते यानी उद्विग्नता का धर्मस्य यानी अनैतिकता का तमस अज्ञान का च तथा अपि भी पश्चिमी का मतलब होता है पीठ नाड्य मतलब नासों का और नद अर्थात बड़ी नदियों का नदी नाम अर्थात नालों का च गोत्राणाम पर्वतों का अस्थि हड्डियों का संहिता संकलन यहाँ पर अनुवाद देखिए भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता का तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है पीठ है मतलब भगवान का जो अगर यहाँ पर संसार में कहीं पर भी उद्विग्नता है या अज्ञान है या अनैतिकता है जहाँ पर कुछ धर्म नहीं है कुछ सदैव क्लेश है वो सब क्या है मतलब भगवान का पीठ है मतलब वो जो भगवान से विमुख हो जाते हैं वही ऐसे कार्य करते हैं और आगे कहते हैं उनकी नसों से नदियाँ तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं संसार में जो कुछ भी है भगवान का ही एक स्वरूप है उसके विषय में बता रहे हैं आगे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अवधारणा का खंडन करने के लिए यहाँ पर भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबंध विश्लेषण दिया गया है सिर्फ क्यों दिया गया है क्योंकि लोगों को ये बताया जाए कि भगवान निराकार नहीं है भगवान के अंग हैं और भगवान के अंग इतने विशाल हैं जैसे जितनी भी नदी हैं जितनी भी नदियां हैं वो भगवान की नसें हैं जितने भी पहाड़ हैं वो भगवान की हड्डियां हैं जो उद्विग्नता है वो भगवान का पीठ है तो जो जो कुछ भी संसार में है वो भगवान का ही स्वरूप है भगवान का ही एक अंश है तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताएं भगवान के शरीर यानी विराट रूप के प्राप्य वर्णन से स्पष्ट है कि भगवान का स्वरूप सामान्य संसारी अवधारणा से भिन्न है जैसा हमारा छोटा सा शरीर है ऐसा नहीं है किसी भी दशा में कभी भी वे निराकार या शून्य नहीं है उनका शरीर है विशाल है लेकिन वो फिर भी निराकार नहीं है क्योंकि अज्ञान भगवान का पृष्ठ भाग यानी पीठ है जैसे बताया गया अतएव अल्पज्ञों का अज्ञान भी भगवान की शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता है वो अज्ञान भी भगवान का ही स्वरूप है ना जो अज्ञान है तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अज्ञान भगवान की पीठ है मतलब वो विमुक्त हो तो अतएव अल्पज्ञों का अज्ञान भी भगवान की शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता है वो भी भगवान का ही स्वरूप है क्योंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का उद्गम स्वरूप है अतएव कोई ये ढींग नहीं हांक सकता है कि वे केवल निर्विशेष है वो प्रत्येक वस्तु उनके शरीर का ही उनका उद्गम जो है उनका शरीर ही है तो कोई ये कैसे कह सकता है कि उनका कोई शरीर है ही नहीं इसके विपरीत भगवान के पूर्ण वर्णन से सिद्ध होता है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों हैं जो मेन बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि भले ही अगर कोई मानता है कि भगवान निराकार है तो डेफिनेटली भगवान का एक स्वरूप निराकार भी है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि भगवान का कोई साकार स्वरूप नहीं है वो एक ही साथ में निराकार भी है और साकार भी है और अगर पूछा जाए कि उनका मूल स्वरूप कौन सा है तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है और उनका निर्विशेष प्रकार उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है साकार से ही निराकार का उद्गम होता है निराकार से कभी भी साकार का उद्गम नहीं होता है तो मूल रूप साकार ही है और ये जो निराकार जो है वो सब उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है जो लोग सामने से भगवान का दर्शन करने का सुअवसर पाने के लिए सद्भागी बनते हैं वे ही भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार करते हैं, किंतु जो कुंठित है और इसलिए भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं, अथवा जो भगवान का दर्शन पीछे की ओर से करते हैं, वे उनके निर्विशेष रूप के ही साक्षात्कार कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सम्मुख आना पड़ेगा, ये अज्ञानता कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई साकार स्वरूप नहीं है, ये भी भले ही भगवान का ही एक उद्गम तो भले इसके भी भगवान है, लेकिन पीछे खड़े होकर भगवान के स्वरूप का दर्शन कैसे होगा। भगवान के सम्मुख आइए, किसी शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन में, किसी शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भगवान के स्वरूप का दर्शन कीजिए, भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कीजिए। इसी से जीव का कल्याण होगा, इसी से जीव की मुक्ति होगी, इसी से जीव को वास्तविक जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण। ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।